ಓಂ ಶಾಂತಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸಬ್ ಫ್ರೆಶ್ ಹೇ ಆರ್ ಪೂರಾ ಅಟೆನ್ಷನ್? ಅಪ್ ತೀನ್ ದಿನೋ ಸೇ ಮೈ ಕಹೂಂಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕರ್ ರೇ. ಹರ ಕೈ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆತಿ ಹೈ, ಅಂತ ಮೇ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಜರೂರ ಕರಾತಿ ಹೈ. ತೋ ಆಪ್ ವಿಧಿ ಸೇ ತೋ ವಾಕುಫ್ ಹೈ, ಪರಿಚಿತ ಹೈ ಹಿ. ಇಸಿಲಿಯೇ ಮೈ ಕೇವಲ ರಾಜಯೋಗ ಕಿ ವಿಧಿ ಔರ್ ಸಿದ್ಧಿ ಕ್ಯಾ ಹೈ उसको उसकी केवल हिंट दूंगी, क्योंकि आप प्रैक्टिकल कर चुके हैं. फिर हम देखेंगे कि विधिवत मेडिटेशन करने से जीवन के अंदर क्या सिद्धि प्राप्त होती है. तो राजयोग की विधि क्या है? विधि देखने से पहले थोड़ा राजयोग का आधार देखेंगे. लौकिक दुनिया में भी अगर व्यक्ति व्यक्ति को याद करता है तो उसका आधार, उसका बेस क्या होता है? किस आधार पे हम किसी को याद करते हैं? तो कहते हैं सबसे पहले बात जो जरूरी है किसी को याद करने के लिए, वो क्या है? वो व्यक्ति का परिचय. जब तक हम किसी व्यक्ति को जानते नहीं हैं तो उसको याद करेंगे ही क्यों? परंतु केवल जानना पर्याप्त नहीं है. आज हम बहुत सारे लोगों को न्यूज़पेपर के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू जानते हैं, लेकिन कभी उसको याद करते हैं क्या? कभी याद करते हैं क्या? नहीं. तो सेकंड इंपॉर्टेंट बात जो जरूरी है, उस व्यक्ति के साथ मेरा संबंध. तो अगर व्यक्ति के साथ मेरा संबंध का पता है तो हम याद अवश्य करते हैं. और तीसरी बात जो जरूरी है, वो व्यक्ति के साथ मेरा स्नेह, मेरा प्यार. अगर प्यार है तो याद करने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः याद आता है. बल्कि बहुत ज्यादा प्यार है तो याद सताती है. और तीसरी जो आवश्यक बात है, जब किसी व्यक्ति से प्यार हो जाता है तो उसकी जो चीज है, उसकी जो बिलोंगिंग्स है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो हमारी हो जाती है, जिसको कहते हैं प्रॉपर्टी, प्राप्ति ऑटोमेटिक हो जाती है. फिर उसमें हिसाब किताब नहीं होता, इतना तुम्हारा इतना मेरा, नहीं. जो चीज हमारी वो चीज उसकी. तो ये बात तो व्यक्ति के लिए है, लेकिन राजयोग अर्थात क्या? मैं आत्मा अपने मन बुद्धि से परमात्मा को याद करूं, दिन आप यहाँ पर हैं, पहले दिन ही आपको स्वयं का परिचय मिला, मैं याद करने वाली कौन? तो ये देह नहीं, आत्मा, और आत्मा अपने मन बुद्धि से परमात्मा को याद करती है। मन से अर्थात सकारात्मक विचारों से हम उसके साथ जुड़ते हैं, परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, और उस विचारों को बुद्धि विजुलाइज करती है। जब उस विचारों को बुद्धि विजुलाइज करती है तो हमको उस चीज की अनुभूति होती है। उसको ही योग कहा जाता है। तो मुझे स्वयं का परिचय मिला, योग करने वाला कौन और मेरा लक्ष्य क्या, किससे मुझे अपने मन बुद्धि को जोड़ना है। तो हमने कल परमात्मा के सत्य परिचय को भी जाना। कई बार हमारी कंप्लेंट्स होती है कि हम मन को एकाग्र करना चाहते हैं लेकिन एकाग्र नहीं कर पाते क्योंकि परमात्मा का सत्य परिचय नहीं है। मुझे बुद्धि को एकाग्र करना कहाँ है वो मुझे पता नहीं है। तो अभी वो बात भी मुझे पता चली कि मेरा पिता, मैं आत्मा निराकार ज्योति स्वरूप और मेरा पिता भी ज्योति स्वरूप, मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली, परम धाम की रहने वाली, तो पिता भी कहाँ रहता है, कहाँ उससे शक्तियां प्राप्त करनी है, कहाँ उसके सानिध्य का अनुभव करना है। क्योंकि आज मुझे ठंडक चाहिए तो मैं क्या करूंगी, समुद्र किनारे जाके बैठूंगी तो ऑटोमेटिक वो ठंडी हवाएं मैं फील कर सकती हूँ। अगर परमात्मा के गुण मुझ में चाहिए, परमात्मा की शक्तियां मुझ में चाहिए, तो मुझे क्या करना है, अपने विचारों से, मन से ऊपर जाना है। कहा जाता है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो मुझे मेरे संकल्पों से, संकल्प सबसे फास्ट है, उसके आधार से, संकल्पों के आधार से, संकल्पों को रॉकेट बना करके मुझे ऊपर पहुंचना है, पांच तत्वों की दुनिया से पार पहुंचना है, और वो प्रकाश की दुनिया, उस प्रकाश की दुनिया में, वो परम ज्योति के सानिध्य में बैठ करके परमात्मा के गुणों और शक्तियों की अनुभूति करनी है, उसके साथ कनेक्शन जोड़ना है। तो जैसे ही मेरा कनेक्शन जुड़ता है उसको ही कहा जाता है राजयोग, और मुझे प्राप्ति होना शुरू हो जाती है, मेरी बैटरी रिचार्ज होना शुरू हो जाती है। तो ये विधि है कि सबसे पहले जिसे मुझे याद करना है उसी स्वरूप में मुझे अपने आप को टिकाना है। इसीलिए क्या करते हैं, कहते हैं, बार बार आपने सुना होगा, विड्रॉ योर सेल्फ फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, अपने आप को बाहरी दुनिया से थोड़े समय के लिए उसको भूल जाओ और अपने को क्या करो, आत्मा समझो, अर्थात आत्म भाव में टिको। तो जब हम आत्म भाव में टिकते हैं ऑटोमेटिकली बाहरी कनेक्शन, दुनिया का कनेक्शन, व्यक्ति का, वस्तु का, वैभव का, अपने कामकाज का सारा कनेक्शन और आत्मा का कहां हो जाता है, परमात्मा के साथ साथ मेरा क्या संबंध है। हम हमेशा गाते हैं तो तुम्हारी कृपा से सुख गने रे, तो उनकी याद ही उनकी कृपा है, उनका ध्यान ही उनकी कृपा है, ऑटोमेटिकली एनर्जी फ्लो होती है। तो आत्मभाव में टिकना अर्थात इट इज जर्नी इनवर्ड्स, ये हमारी आंतरिक जर्नी है, बाहर की चीजों से डिस्कनेक्ट होना। इसलिए आप मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं, चमड़े की जुत्ती को बाहर उतारते हैं। तो मुझे बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस होना है, वो जुत्ती को उतारना है, आत्मभाव में टिकना है। ये फर्स्ट स्टेप है जर्नी इनवर्ड्स, और उसके बाद कहते हैं जर्नी अपवर्ड्स, ऊपर जाना है, क्योंकि मुझे जिसके साथ कनेक्ट होना है वो कहां रहते हैं, परम धाम में रहते हैं, जो पांच तत्वों की दुनिया से पार है, छठा ब्रह्म तत्व है, प्रकाश की दुनिया है, वहां मेरा पिता है। तो मुझे बुद्धि से वहां पहुंचना है, उसके सानिध्य में रहना है, उसकी शक्तियों का वहां अनुभव करना है, अनुभव करके खुद भरपूर होकर के वापस जर्नी आउटवर्ड्स, इस दुनिया में आके वो शक्तियों को लेकर के मुझे इस संसार के अंदर कार्य करना है। ऊपर शांति का अनुभव किया तो मुझे शांत स्वरूप होकर के अपना कार्य करना है, शक्ति का अनुभव किया तो वो शक्तियों को धारण कर मुझे कार्य व्यवहार में आना है। तो कार्य व्यवहार में जो भी परिस्थितियां आएगी वो अंदर की शक्ति होने के कारण हम उस परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। तो ये राजयोग की विधि है, जर्नी इनवर्ड्स, जर्नी अपवर्ड्स एंड जर्नी आउटवर्ड। परंतु आज हम आपको ये बताने वाले कि ये राजयोग का अभ्यास करना इतना जरूरी क्यों है, इससे क्या सिद्धि होती है, क्योंकि कहा विधि से सिद्धि। तो क्या सिद्धि होती है, क्या जीवन के अंदर मुझे प्राप्ति होती है, क्यों मैं करूं, क्योंकि कहते हैं जब तक प्राप्ति का पता नहीं है तब तक मन और बुद्धि मोटिवेट नहीं होते हैं वो चीज करने के लिए। तो अपने मन बुद्धि को मोटिवेट करना ये बहुत जरूरी है। और आज के समय को देखते हुए राजयोग रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज छोटे बच्चे को भी इतना तनाव है। और तनाव क्यों आता है, जब हमारी आंतरिक शक्तियां कम हो जाती है और परिस्थिति छोटी भी होती है तो आंतरिक शक्ति ना होने के कारण हम उसको पार नहीं कर पाते हैं। पावर टू कोप अप द सिचुएशन, वो पावर हमारे पास नहीं है। हम आत्मा की शक्ति को सारा दिन जो भी कर्म करते हैं उसमें यूटिलाइज 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 करते हैं, लेकिन अगर हम शांति से ना बैठे और उसको फिर से पावर हाउस जो परमात्मा है उसके साथ ना जोड़े तो हमारी बैटरी रिचार्ज नहीं होती। इसीलिए हमारे अंदर शक्तियों का अभाव है, इसीलिए हम सांसारिक जो भी हमारा कारोबार है वो कारोबार करते हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, थक जाते हैं, कोप अप नहीं कर सकते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, कभी कभी तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, कभी कभी हमको डॉक्टर की भी हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसीलिए कहा राजयोग क्या है, रिक्वायरमेंट है। आपने फर्स्ट लेसन में ये भी जाना कि मुझ आत्मा के क्या वर्चूज क्या है, तो सात वर्चूज बताए, किसी को याद है, किसी को याद है, बोलो। आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा शक्ति स्वरूप है, आत्मा पवित्र स्वरूप है। ये क्वालिटीज, ये गुण आत्मा है तो उसके अंदर ऑलरेडी है, लेकिन ये गुण जब हम कार्य में आते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, हमारी शक्तियां बन जाती हैं। परंतु ये शक्तियां कब बनती है, ऐसे देखा जाए तो वो शक्तियां भी हरेक के अंदर है, परंतु वो समय पे कार्य में नहीं आती है। तो जब हम अटेंशन रखते हैं, अटेंशन माना क्या, कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, और मैं एक सिंपल आत्मा नहीं हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, आनंद स्वरूप आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं। जब ये मुझे अटेंशन रहता है तब हम इन गुणों को अपने लाइफ के अंदर यूज करते हैं, और जब लाइफ के अंदर यूज करते हैं तो वो शक्तियां बन जाती है। कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल नॉलेज जरूरी है, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में इंकल्केट करते हैं तो वो स्पिरिचुअल पावर बन जाता है, वो हमारी शक्ति बन जाता है, पावर बन जाता है। जैसे शांति वो गुण भी है, लेकिन शांति वो शक्ति भी है, क्योंकि जब हम चुप रहते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक चुप सौ सुख। आजकल के समय में चुप रहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्या है, टिट फॉर टैट पॉलिसी, एक ने मुझे इतना सुनाया तो मैं डबल सुनाऊं, तो वो क्या हो गया, शांति पावर हो गया, शक्ति हो गई। तो परमात्मा को याद करने से, अर्थात एक अटेंशन रखने से, अर्थात ये नॉलेज होने से कि मैं कैसी आत्मा हूं, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन मेडिटेशन, तो वो पावर बनता है। जैसे कहते हैं सूरज की किरणें अगर कॉन्वेक्स लेंस पे एकत्रित करते हैं तो क्या होता है, नीचे कागज रखते हैं तो कागज क्या हो जाता है, जल जाता है। तो वो क्या है, पावर है, जल जाता है। तो राजयोग मेडिटेशन से भी ये जो हमारी इननेट क्वालिटीज है, इननेट वर्चुज है, वो पावर में कन्वर्ट होती है। इसीलिए राजयोग बहुत जरूरी है, इसीलिए कहा अटेंशन। अटेंशन क्या करता है, हमारी एनर्जी को फ्लो करता है। परमात्मा की याद एनर्जी को फ्लो करती है और जब एनर्जी फ्लो होती है तो एनर्जी ग्रो होती है। आपने कल भ्राता प्रेम मसन भाई के लेक्चर में सुना धन की देवी लक्ष्मी। तो कहते हैं कि लक्ष्मी अगर फ्लो होती है तो सुख देती है, अगर एक जगह रुक जाती है तो क्या करती है, दुखी कर देती है। तो लक्ष्मी क्या फ्लो में ही ठीक रहती है, जितने हाथों में घूमेगी उतना क्या होगा, क्या होगा, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तिजोरी में रखने से उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती, उसका परचेजिंग पावर नहीं बढ़ता है। इसीलिए अटेंशन वो फ्लो कराता है हमको, जीवन को आगे बढ़ाता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम ग्रो होते हैं, तब हमारी उन्नति होती है। अब राजयोग जब प्रैक्टिकल में हम जीवन में करते हैं, एक व्यक्ति है जिसने योग सीखा है लेकिन करता नहीं है, और एक व्यक्ति है जिसने योग सीखा है और प्रैक्टिकल जीवन में रोज करता है, तो उसमें अंतर क्या है, उसकी प्राप्तियों में अंतर क्या है। तो हमने देखा ही कि आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, उसके अंदर वर्चुस तो है लेकिन पावर भी है। वो क्या है, शक्तिवान है। और परमात्मा कौन है, सर्वशक्तिमान है। परमात्मा कौन है, सर्वशक्तिमान है। तो परमात्मा के साथ बुद्धि का योग जब हम जोड़ते हैं, जिसे राजयोग कहते हैं, तो वो सर्व शक्तियों का फ्लो हमारे अंदर आता है, सर्व शक्तियों का फ्लो आता है। लेकिन फिर भी कहते हैं सर्वशक्तियां तो आती हैं, लेकिन उनमें भी मुख्य 8 शक्तियां हैं जो जीवन के अंदर आती हैं। तो वो 8 शक्तियां कौन सी है, तो सबसे पहले है सहन करने की शक्ति। झाड़ दिखाया है। दूसरा है समाने की शक्ति, सागर। तीसरा है परखने की शक्ति। चौथा है निर्णय करने की शक्ति। पांचवा है सामना करने की शक्ति। छठा है सहयोग की शक्ति। सातवा है अंतर्मुक्ता की शक्ति, अर्थात संकीर्णन करने की शक्ति। और आठवां है समेटने की शक्ति। पावर टू टॉलरेट, पावर टू एडजस्ट, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, डिसीशन मेकिंग, पावर टू फेस, पावर टू कोऑपरेट, पावर टू विथड्रॉ। ये 8 शक्तियां जीवन के अंदर प्राप्त होती है। कहते ये 8 ही शक्तियां प्रकृति के बहुत करीब है, इसीलिए प्रकृति में ऐसे कई चीजें हैं जो इन 8 शक्तियों को दर्शाती हैं। तो प्रकृति के साथ इसका बहुत नाता है। अब ये 8 शक्ति हमारे जीवन के अंदर क्यों जरूरी है, जीवन के अंदर क्यों जरूरी है, तो कहते हैं जीवन के अंदर 4 सेक्टर्स है जहां पर मुझे ये शक्तियां बहुत आवश्यक है। वो चार सेक्टर कौन से हैं, या तो चार बातें हैं, वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम जीवन के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन में हैं, तो संबंध, तो जहां संबंधों के अंदर समस्याएं आती है तो वहां दो शक्तियों की आवश्यकता होती है। उस संबंधों को सुमधुर बनाने के लिए, उस संबंधों को सकारात्मक बनाने के लिए दो शक्तियां ज्यादा प्रयोग में आती है, वो वर्क करती है। तो वो कौन सी दो शक्तियां हैं? तो एक है सहन शक्ति, पावर टू टॉलरेट, और दूसरा है समाने की शक्ति। ये दोनों शक्तियां बहुत करीब है, बहुत इंटर रिलेटेड है। समाने की शक्ति, पावर टू एकोमोडेट, और दूसरा जो सेक्टर है हमारा वर्क प्लेस, जहां हम काम करते हैं, जहां हमारी जिम्मेवारियां हैं, उस जिम्मेवारियों को मुझे संभालना है। वहां भी बहुत सारी समस्याएं होती, तो उस समस्याओं का समाधान हमें दो शक्ति मदद करती है, एक परखने की शक्ति और एक निर्णय लेने की शक्ति, वो हमें मदद करती है। और तीसरा सेक्टर जो है, जो अचानक जीवन के अंदर परिस्थितियां आती है, अचानक आ जाती है, तो उस वक्त सामना करने की शक्ति और सहयोग शक्ति, पावर ऑफ कोऑपरेशन, वो बहुत जरूरी है। चौथी बात जो है, जो स्वयं से जुड़ी है। कभी कभी हम कंफ्यूजन्स में होते हैं, कभी कभी हम डिप्रेशन में होते हैं, गिल्ट में होते हैं, अपसेट होते हैं। ऐसे समय पर हम फिर से उमंग उत्साह में आए और कार्यरत हो जाए, तो उसके लिए दो शक्ति आवश्यक है। एक है अंतर्मुखता की शक्ति, पावर टू विड्रॉ, और दूसरा है समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप। ये बहुत जरूरी। तो इन चारों क्षेत्रों के अंदर जो जो समस्याएं हमारे जीवन के अंदर आती है, उसको हम विस्तार से देखेंगे कि कैसे ये शक्तियां मुझे मदद करती है। संबंधों के अंदर बहुत समय से हमारे संबंध है, कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, भ्रांतियां है, बिलीफ सिस्टम है। कुछ कारणों से हमारे संबंध ठीक नहीं है, जैसे जिसके साथ मुझे कार्य करना है वो ऑफिस में रोज लेट आते हैं, अब लेट आते हैं मुझे गुस्सा आता है, तो क्या करना चाहिए? गुस्सा करना चाहिए? गुस्सा करना चाहिए? तो राजयोग हमें क्या सिखाता है? जो परिस्थिति आई है उसके डेप्थ में जाना, उसको समझना, उस व्यक्ति के साथ बैठना, वो क्यों लेट आता है। पहले तो लेट आता है तो मुझे गुस्सा आता है, लेकिन जब मैं उसकी परिस्थिति समझती हूं वो क्यों लेट आता है, हेल्थ इश्यू है, घर के अंदर बहुत कोई क्रॉनिक डिजीज है किसी को, इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसको खुद डील करना पड़ता है, इसीलिए वो लेट होता है। तो जो पहले मैं गुस्सा होती थी, अगर उस परिस्थिति को मैं अंडरस्टैंड करती हूं, अंडरस्टैंड करने के बाद मुझे गुस्सा आएगा, आएगा क्या होगा, क्या होगा, सहानुभूति होगी, सहानुभूति होगी कि इसको मदद करनी चाहिए। ऐसे ही कभी कोई हमारे से अच्छा व्यवहार नहीं करता है, कोई कभी बहुत गुस्सा कर लेता है, अपशब्द बोल देता है, अब्यूज करता है, उस समय मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, हम भी क्या करते हैं, हम भी सामने से गुस्सा करते हैं। गुस्सा करना माना उस वक्त गुस्से ने उसके मन बुद्धि को प्रभावित किया है, उसका मन और बुद्धि काम नहीं कर रहा है, कंट्रोल में नहीं है। और मैंने भी गुस्सा किया तो मैंने भी क्या किया, अपना कंट्रोल खो दिया। तो इससे परिस्थिति बिगड़ेगी सुधरेगी, बिगड़ेगी सुधरेगी, बिगड़ेगी। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहा ना अटेंशन, कुछ बातों की रियलाइजेशन आत्मा को है, लेकिन उस वक्त अटेंशन नहीं रहता है, उस वक्त उस शक्ति को हम यूटिलाइज नहीं करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे कहते हैं किसी ने मुझे 10 सुनाई तो मैं क्या करती हूं, उसको 20 सुनाती हूं, किसी ने 20 सुनाई मैं उसको 40 सुनाती हूं, किसी ने 40 सुनाई आखिर मैं चुप हो जाऊं, मैं साइलेंस में आ जाऊं, तो वो क्या करेगा, उसके पास भी कोई अल्टरनेटिव नहीं बचेगा साइलेंस में आने बिगर, क्योंकि ये क्या है, बॉल गेम है। मैंने बॉल को मारा तो उसने भी सामने से मारा, मैंने मारा उसने भी सामने से मारा, लेकिन मैं अगर खेलना छोड़ दूं, मारना छोड़ दूं, मैं साइलेंट में आ जाऊं, वो क्या करेगा, साइलेंट में आना पड़ेगा। तो कई लोग कहते हैं तो वो करे तो करता रहे, करे तो करता ही रहे, गुस्सा अब्यूज करता ही रहे, दुर्व्यवहार करता ही रहे, और मैं शांति से बैठी रहूं, तो लोग तो मुझे कमजोर समझेंगे और करेंगे। सोचिए, कहा है सहन शक्ति, गुस्सा करने के लिए कोई डिग्री नहीं लेनी होती है, एक छोटा बच्चा भी गुस्सा कर लेता है। आप मार्केट में ले जाते हैं, मॉल में ले जाते हैं, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है नहीं है वो नहीं देखेगा, वो तो कोई खिलौना देखेगा और रोना शुरू कर देगा, मुझे ये चाहिए, माना चाहिए, और अगर ना कहते हैं तो वो भी गुस्सा करेगा। तो गुस्से के लिए कोई शक्ति नहीं चाहिए, वो तो वीकनेस है, कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या कहा है, शांति में रहने के लिए शक्ति चाहिए, वो है सहन शक्ति। सहन करने को शक्ति कहा गया। तो कई क्या कहते हैं, मैंने 5 बार सहन किया लेकिन वही बात उसने फिर से रिपीट की, तो मैंने 6 बार क्या किया, क्या किया, मैंने बोल दिया। क्या केवल वो बोल देता है, क्या केवल वो बोल देता है, लेकिन क्या होता है, उसकी भावनाओं का, उसके इमोशंस का विस्फोट हो जाता है। जो 5 बार उसने सहन किया ना, वो पूरा का पूरा निकल जाता है, पूरा का पूरा निकल जाता है। तो उसने सहन किया, सहन किया, उसने क्या किया, अपने आप को सप्रेस किया, दमन किया। और दमन करना एडवाइजेबल नहीं है, हेल्दी नहीं है। दमन करने की लिमिट है, सहन करने की लिमिट नहीं है, सहन करने की लिमिट नहीं है। सहन करने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई बड़ी पोजीशन में हूं और मुझे किसी को सिखाना है और मैं उसको शिक्षा ना दूं, ये बात नहीं है। लेकिन समय को देखते, परिस्थिति को देखते, मुझे उसको शिक्षा देनी है। अगर उस वक्त मैं शांत रह जाती हूं, अगर मेरे अंदर उसके प्रति शुभ भावना उस वक्त उत्पन्न होती है, तो शांत रहना, और जब उसका गुस्सा ठंडा होता है, उस वक्त अगर वही परिस्थिति को मैं उसको समझाऊं, तो बात उसके समझ में भी आएगी और वो बात जीवन के अंदर अप्लाई भी करेगा। नहीं तो वो अप्लाई नहीं करेगा। एक बार एक जगह कुछ प्रोग्राम चल रहा था, एक फैकल्टी थी, उसको एक्टिंग बहुत अच्छी आती थी। तो उसने क्या किया कि कोई गुस्सा करता है ना, उसकी एक्टिंग स्लो मोशन में की, स्लो मोशन में एक्टिंग की। तो आपको कभी याद तो होगा कि कब आप गुस्से हुए हैं, लास्टली कब गुस्से हुए हैं लाइफ के अंदर, वो तो याद होगा। तो अगर उस गुस्से को आप पिक्चर के रूप में और वो भी स्लो मोशन के रूप में आप देखेंगे ना, तो आपको ही आपके ऊपर क्या आएगी, हंसी आएगी, आपको ही आपके ऊपर रहम आएगा। जैसे कहते हैं ना, कोई शराबी होता है, शराबी होता है रात को शराब पी करके रास्ते में न्यूसेंस करता है, और कोई पहचाना हुआ व्यक्ति उसको मिलता है, देखता है कि ये शराब पी के न्यूसेंस कर रहा है, और वो व्यक्ति उसको समझाने लग जाए, भाई आप ये क्या कर रहे हो, इतने समझदार हो, क्यों पी इतनी, क्यों कर रहे हो ऐसा, वो समझेगा। दूसरा व्यक्ति देखने वाला जो समझा रहा है उसको क्या कहेगा, वो किसको समझाएगा, जिसने शराब पी है या जो समझा रहा है। तो जो समझा रहा है उस व्यक्ति को कहेगा, भाई आपको दिखता नहीं है इसने पी हुई है, इसका अपने मन बुद्धि पे कंट्रोल नहीं है, वो क्या समझेगा, आप ही समझ जाओ, रास्ता थोड़ा अलग ले लो। तो जिस वक्त जो व्यक्ति गलती करता है, गुस्सा करता है, अब्यूज करता है कुछ भी, उस वक्त वो उसकी वीकनेस है, उस वक्त उसका मन बुद्धि कंट्रोल में नहीं है। उस वक्त अगर हम शांत रहते हैं, शुभ भावना रखते हैं, वो शुभ भावना उसको पहुंचती है, और हमारी शक्ति व्यर्थ नहीं जाती। जो उसको समझाने के पीछे, हमारी शक्ति व्यर्थ नहीं जाती, हम वीक नहीं होते, वायुमंडल को खराब नहीं करते हैं, लेकिन समय देख करके हम उसको, अपनी बात को क्लेरिफाई कर सकते हैं। तो एक चुप रहने से, एक सहन करने से, और एक जो परिस्थिति आई है उसको स्वीकार करने से, स्वीकार कर लिया मैंने, क्योंकि स्वीकार करेंगे तो ही हम अपने आप को समझा पाएंगे, तो ही हम अपने आप को सहन कर पाएंगे। तो स्वीकार कर लेना उसको उस वक्त, तो वो हम कहां से सीखते हैं, सागर से। सागर के अंदर चाहे मीठी नदियां हैं, चाहे खारी नदियां हैं, चाहे कुछ कचरा लेकर के आती है, कुछ भी लेकर के आती है, सागर क्या करता है? सागर क्या करता है? स्वीकार करता है। परंतु बहुत समझदार है सागर। जैसे गणेश चतुर्थी आई, आपने उसका विसर्जन किया, और कोई त्योहार आया, आपने कुछ विसर्जन किया, कुछ डाला, वो डालने के लिए मना नहीं करेगा, उसको स्वीकार करेगा। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप सागर किनारे पे जाओ, क्या होगा? जो चीज उसको नहीं चाहिए, जो चीज नहीं चाहिए, वो क्या करेगा? बाहर डाल देगा। जैसे ऑफिस के अंदर हम हैं, कुछ पेपर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उसको हम संभाल के रखते हैं, और वही पेपर्स कुछ समय के बाद क्या हो जाता है? वैल्यूलेस हो जाता है। तो उसको हम क्या करते हैं? डस्टबिन में डालते हैं। तो कुछ बातें ऐसी होती है जिसको हमें दिल से नहीं लगानी है, दिल में अंदर स्वीकार नहीं करना है। उस वक्त भले स्वीकार कर लिया, लेकिन बाहर से स्वीकार करना है, दिल में नहीं लगाना है, दिल में नहीं लेना है, बुद्धि में नहीं लेना है, लेकिन उसको हमको क्या करना है? डस्टबिन में बाहर डाल देना है। लाइफ के अंदर भी ऐसी परिस्थितियां आती है, तो ऐसा करने से, सहन करने से और समाने से हमारे रिलेशन कैसे हो जाते हैं? सुमधुर हो जाते हैं, अच्छे मेंटेन रहते हैं। उसके बाद वर्कप्लेस पे भी कई ऐसी परिस्थिति आती है, उस वक्त हमारा कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है, हमारा योग अच्छा है, तो हमारा मन शांत है, परमात्मा से योग लगाते हैं तो हमारा मन शांत होता है। और कहते हैं ना कि जब पानी शांत होता है तो अंदर तक दिखाई देता है कि अंदर क्या क्या है। तो हमको भी व्यक्ति, परिस्थिति, व्यक्ति की मनोस्थिति भी हम रीड कर सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति की मनोस्थिति भी रीड कर सकते हैं। तो कारोबार के अंदर अगर कोई समस्या खड़ी होती है तो उस वक्त हमें डिसीशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसीशन लेना ही है। लेकिन उस वक्त मेरी परख शक्ति मेडिटेशन के कारण क्लियर है, तो डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे और राइट डिसीजन लेंगे। सपोज घर के अंदर, कारोबार के अंदर एक बच्चा है जिसने कुछ गलत किया है, आप उसके माँ बाप हैं, आपको सही तो बताना ही है, लेकिन आपने उसको शिक्षा दी लेकिन उसके फ्रेंड्स के आगे दे दी। स्कूल में टीचर है, टीचर ने बच्चा जो सेंसिटिव है उसको कोई शिक्षा दे दी, बहुत बड़ी शिक्षा ना भी हो लेकिन जनरल क्लासरूम में दे दी, तो क्या होगा? क्या होगा? वो शिक्षा उल्टा काम करेगी, वो कभी शिक्षा को जीवन में धारण नहीं करेगा, वो अपनी इंसल्ट फील करता है। तो डिसीशन तो लिया, शिक्षा तो दी, लेकिन समय को नहीं देखा कब मुझे देना चाहिए। तो मुझे इन बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है, शिक्षा देनी है, समय पर देनी है, डिसीशंस लेने हैं समय पर लेने हैं, समय पर भी लेने हैं, लेकिन उस वक्त व्यक्ति की मनोस्थिति भी देखनी है। तो मेरे अंदर बैलेंस होना चाहिए शक्तियों का और वैल्यूज का। जैसे मैं कोई बड़ी पोस्ट पे हूं, मुझे काम भी करवाना है, डिसिप्लिन को भी देखना है, तो मेरे अंदर फर्मनेस तो जरूरी है, फर्मनेस तो जरूरी है कि मुझे फर्म रहना है अपने डिसीजन पे। लेकिन वो पर्सनली मुझे फर्म रहना है, डिसीजंस लेने हैं, लेकिन सामने वाले के लिए मुझे क्या रहना है, फ्लेक्सिबल, अनुरूप रहना है, व्यक्ति के अनुरूप, व्यक्ति के लिए फ्लेक्सिबल। नहीं तो आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके नीचे काम करने वाले क्या कहेंगे, मेरा बॉस कैसा है, कैसा है, बहुत रिजिड है, काम करना बहुत डिफिकल्ट है। तो खुद के लिए बड़ी पोस्ट पे है, डिसिप्लिन जरूरी है, काम करवाना जरूरी है, तो फर्म तो रहना है, लेकिन थोड़ा व्यक्ति को देख करके फ्लेक्सिबिलिटी भी मेरे अंदर होनी चाहिए, मेरे अंदर भावना भी होनी चाहिए और मेरे अंदर रैशनल डिसीजंस भी होने चाहिए। सोच समझ कर डिसीजन ले रहे, सोच समझ कर डिसीजन तो ले रहे, लेकिन भावना को उस वक्त भूल जाए तो भी नहीं चलेगा, तो उसका बैलेंस चाहिए। जीवन के अंदर हम एम्बिशियस तो होने चाहिए कि आगे मुझे बढ़ना है, आगे करना है, लेकिन आगे बढ़ना है एम्बिशियस होने के कारण अभी एट प्रेजेंट जीवन में मुझे जो प्राप्ति है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो भी नहीं चलेगा। और ज्यादा संतुष्ट हूं और एम्बिशियस नहीं हूं तो मेरी लाइफ स्टैग्नेंट हो जाएगी, उधर की उधर रुक जाएगी। तो दोनों का बैलेंस भी बहुत जरूरी है। तो कारोबार के अंदर डिस्क्रिमिनेशन पावर और डिसीजन पावर, डिसीजन मुझे कैसे लेने हैं, तो डिसीजन के लिए क्या दिखाते हैं, हाथ में तराजू है और ऐसी देवी जिसके आंखों पे पट्टी है, तो आंखों पे पट्टी माना, आंखों पे पट्टी माना कोई पक्ष पात्र नहीं, अनबायस डिसीजन। जब आंखों से हम देखते हैं ये व्यक्ति है, इसकी कास्ट ये है, इतना पैसे वाला है, ये इसकी क्वालिटी ये है, तो अगर हम उससे प्रभावित, बाहिक पर्सनालिटी से प्रभावित होकर के अगर हम डिसीशंस लेते हैं तो कभी कभी वो गलत हो जाते हैं। तो ये आंखों से केवल नहीं, लेकिन तीसरी आंख से, अर्थात जो नॉलेज है, समझ है, उसको तीसरी आंख कहते हैं। उससे देखने से, अर्थात जो आध्यात्मिक ज्ञान हमें मिला है कि सामने वाली व्यक्ति एक प्योर आत्मा है, आत्मा है, तो जब हम आत्मा को देख करके डिसीशन लेते हैं तो हमारे डिसीशन अनबायस्ड हो जाते हैं। तो डिसीशंस लेते समय अनबायस्ड, आत्मा को देख करके डिसीशन लेने हैं, उसकी बाहरी पर्सनालिटी को नहीं देखना है और वैल्यूज और शक्तियों के बीच में बैलेंस जो बताया, दो दो, भावनात्मक रैशनल, ऐसे हमें डिसीशंस लेने हैं। तो हम कार्य व्यवहार में रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए जो भी समस्या आएगी तो हम परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति उसमें यूज करेंगे। तीसरा, जो अचानक परिस्थिति आती है, मैं 5-10 मिनट ज्यादा ले सकती हूं, तो जो अचानक परिस्थितियां आती है उसका सामना मैं कैसे करूं, तो क्या कहते हैं, हिम्मतवान, हिम्मतवान मुझे बनना है। कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे खुदा, जो हिम्मत रखते हैं उसको कौन मदद करता है? उसका फॉर्चून भी मदद करता है, भाग्य भी मदद करता है। और अगर परिस्थिति आई है और मैंने उसका सामना करने का ठान लिया, हिम्मत से काम किया, हिम्मत से काम किया, तो क्या होगा? वो मेरे लिए स्टेपिंग स्टोन बन जाएगा। तो कोई भी परिस्थिति आई है, मुझे रिस्पॉन्सिबल होकर के सिचुएशन को देख करके लीड करना है, हिम्मत से काम करना है, ना कि उस परिस्थिति को देख करके मैं दुख में बैठ जाऊं, हताश हो जाऊं, निराश हो जाऊं। इसीलिए पावर टू फेस, और पावर टू फेस के साथ साथ क्या करना है? सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति में क्या दिखाते हैं? गोवर्धन पर्वत। सबकी क्या हुई? सहयोग की उंगली मिली, वो भी लास्ट उंगली दिखाते हैं, और उंगली के अंदर भी तीन पार्ट है, है ना? तो ऐसे समय में हिम्मत हमारी और सहयोग सबसे, परंतु सबसे ज्यादा किसका सहयोग हम अनुभव करते हैं? कि अगर हम रोज मेडिटेशन करते हैं तो ऐसी सरकमस्टेंसेस के अंदर जो अचानक परिस्थिति आती है, ऐसे समय पर परमात्मा हमें किसी न किसी रूप से मदद करते हैं। इसके तो हम सब अनुभवी हैं, बहुत सुंदर सुंदर हमारे अनुभव होंगे। सहयोग मिल जाता है तो हमारी दादी जी कहती थी, जीवन के अंदर तीन पार्ट है ना उंगलियों के, तो तीन चीजों का सहयोग हमें देना है, तीन चीजों का सहयोग हमें देना है। तो पहली चीज क्या है? स्माइल। हम कहते हैं स्माइल क्या करते हैं? सब चीजों को इन ऑर्डर कर देता है, शुभ भावना भी रखता है, कोई प्रॉब्लम्स, बिगड़े हुए संबंध भी सुधर जाते हैं एक स्माइल से, एक स्माइल से सर्व का सहयोग भी प्राप्त हो जाता है। और दूसरा, कोई भी मिलता है तो मुझे स्माइल देना है, वो सहयोग देना है, और दूसरा मुझे स्व का परिवर्तन करने की ठान लेनी है, मुझे बदलना है, मुझे अपने विचारों को, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मुझे अपने विचारों को सकारात्मक बनाना है। कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, उसमें से मुझे सकारात्मकता ढूंढनी है। कहते ना, एक दरवाजा बंद हो गया तो चांसेस है दूसरा दरवाजा खुलने की, तो मुझे निराश नहीं होना है। इसलिए क्या कहते हैं, सिचुएशंस आर स्टेपिंग स्टोन्स, उन्नति की सीढ़ी है, तो मुझे उसे पार करना है। तो एक स्माइल का सहयोग, दूसरा दादी कहती थी, हमारी बड़ी दादी क्या कहती थी, कि उसको शरबत पिलाना है। तो कैसी भी परिस्थिति हो, सकारात्मकता को देख करके हमें उसको दो बोल मीठे बोलने का शरबत पिलाना है, दो बोल मीठे बोलने का शरबत पिलाना है। और केवल पिलाना नहीं है, लेकिन उसको दिल खुश मिठाई भी खिलानी है। मतलब वो हमारे पास आया है, वो परिस्थिति आई है, तो उस वक्त मुझे क्या करना है? दिल खुश करने वाली दो बातें बतानी है पहले, अर्थात उसकी प्रशंसा करनी है, अच्छी बातें सुनानी है, उसके गुणों को देखना है, और फिर कोई भी बात सुनानी है, तो ऑटोमेटिक हमको सर्व का सहयोग मिलता जाएगा। और जब सर्व का सहयोग मिलता है तो हम कोई भी परिस्थिति को पार कर सकते हैं। तो केवल खुद की विशेषता नहीं, लेकिन सर्व की विशेषताएं, सर्व की विशेषताओं का सहयोग मिलता है तो हम परिस्थिति को आसानी से पार कर सकते हैं। संगठन की शक्ति, कोई भी कार्य संगठन की शक्ति से किया जाता है, सबको इन्वॉल्व किया जाता है तो वो बहुत इजीली काम होते, बहुत इजीली काम होते। आपने वो यहाँ कहानी तो सुन ली है, मैं समझती हूँ, पांच उंगलियों वाली। एक बार पांचों ही उंगलियों में वाद विवाद हो गया और एक कहे मैं बड़ी, दूसरी कहे मैं बड़ी। जैसे पहले थंब है तो थंब ने कहा मेरे खाली प्रिंट ही बहुत कुछ काम कर सकते हैं, अंगूठे के प्रिंट लगाते हैं ना, तो बहुत कुछ काम हो सकता है इसीलिए मैं बड़ा। और सेकंड नंबर उंगली ने कहा मैं परमात्मा की दिशा निर्देश करता हूं इसीलिए मैं बड़ा। और तीसरी उंगली ने कहा मैं तो हूं ही बड़ी, दिखने में ही बड़ी हूं तो मैं बड़ी हूं। और चौथे ने कहा कि हर शुभ कार्य करने में मेरे को लोग यूज करते, टीका लगाते, तो मैं बड़ी हूं। और लास्ट उंगली ने कहा आप सभी को पता नहीं है मैंने ही तो गोवर्धन पर्वत उठाया, तो बड़ा तो मैं ही हूं। तो सबके अंदर विशेषता है, लेकिन फिर उन वाद विवाद के अंदर उनको कहा गया भाई आप लड्डू बनाओ, तो एक के अंदर कितनी भी विशेषता हो, कुछ भी हो, क्या वो लड्डू बना सकते हैं? नहीं। तो संगठन, ये पाम है, इस पांचों उंगलियों को संगठित रखता है तो कोई भी कार्य इजीली हो जाता है। तो हमारे सामने कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर 99 अवगुण हो, लेकिन उसके अंदर एक गुण तो होगा, तो मुझे क्या करना है उस गुण को देख करके उस व्यक्ति के गुण को लाइफ के अंदर यूटिलाइज करना है। तो परिस्थिति ऐसे ही पार हो जाएगी, एक हिम्मत और एक सबकी विशेषताओं को यूज करना, सर्व का सहयोग मुझे लेना। और जीवन के अंदर तीन बातें याद रखना, स्माइल, मीठे बोल का शरबत और दिल खुश मिठाई, अर्थात उसके गुणों की सराहना करना और फिर काम करना। पांचवी, चौथी और अहम बात, तो ये कॉपरेट सहयोग की शक्ति यूटिलाइज होती है। और चौथी बात, जो हमारी स्वयं की स्थिति जिस वक्त खराब होती है, डिप्रेस होती है, अपसेट होते हैं, थोड़ा गिल्ट फील करते हैं, दुख दर्द में होते हैं, कुछ काम करने से पहले हताश निराश होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति आती है तो हम क्या करें? क्योंकि करने वाले तो हम हैं, करने वाले तो हम हैं। तो कहते हैं हमें कछुए की तरह अपने आप को विड्रॉ करना है, सांसारिक कार्य से विड्रॉ करना है, विड्रॉ करना है और अपने साथ रहना है, साइलेंस में जाना है, मेरे साथ रहना है, मेरे से बातचीत करनी है, मेरे इनर सेल्फ के साथ रहना है, मुझे विड्रॉ करके इनर सेल्फ को बताना है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं परमात्मा का बच्चा हूं, परमात्मा मेरे साथ है। तो वो जो परिस्थिति है मेरी, दुख दर्द की फीलिंग, थोड़ा डिप्रेशन की फीलिंग, ऐसा करने से क्या होगा? हम रिचार्ज हो जाएंगे, जिसको ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। हर घंटे में यहां 2 मिनट के लिए बचता है एक गीत, वो 2 मिनट के लिए सेल्फ से हाई हेलो करना है, मैं ठीक हूं, कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हुई, अगर हुई तो खुद को अच्छे विचार देने हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं परमात्मा का बच्चा हूं, परमात्मा मेरा साथी है, परमात्मा मेरे साथ है। तो ये करने से हमारी आत्मा की बैटरी फिर चार्ज हो जाएगी। और इसके बाद है खुद को ठीक करने के लिए पावर टू पैक अप, समेटने की शक्ति। कुछ ऐसी बातें होती है जो हम अपने साथ बातचीत भी करते हैं ना, तो हम अपने आप को ठीक नहीं कर पाते हैं। किसी किसी का व्यवहार कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि उसको भुलाना चाहते हैं ना तो भी भूलता नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं हमारे अंदर वो शक्ति आती है राजयोग से कि हम उस वक्त उस व्यक्ति को क्षमा कर पाए, विड्रॉ करे अपने आप को और उसको क्षमा करे। पावर टू पैक अप, जिसको कहते हैं फुल स्टॉप लगाना, विड्रॉ करना थोड़े समय के लिए, उसको कहते हैं कॉमा। और पावर टू पैकअप माना फुल स्टॉप लगाना, समझना ये बात मेरे लिए थी ही नहीं, जरूरी नहीं है, मेरी उन्नति के लिए ये बात है ही नहीं, इसको दिमाग से निकाल दो, फुल स्टॉप लगा दो, भूल जाओ इसको, माना लेट गो कर दो, माफ कर दो। तो ये गुण भी मेरे अंदर बहुत जरूरी है, इस शक्ति को यूटिलाइज करना लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है, और वो आता है मेडिटेशन से। है शक्ति लेकिन उस वक्त प्रयोग में आती है, अटेंशन होता है अर्थात परमात्मा से कनेक्शन होता है, तो हम उस वक्त वो शक्ति को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। फुल स्टॉप लगाना, तो कहते हैं ये स्पिरिचुअल ग्रामर है, जैसे वो ग्रामर होता है कॉमा फुल स्टॉप, ये स्पिरिचुअल ग्रामर है। कब मुझे कॉमा लगाना है अर्थात इंट्रोवर्ट होना है, सेल्फ से बात करनी है, सेल्फ को अप्रिशिएट करना है, सेल्फ में पॉजिटिविटी भरनी है विचारों से, श्रेष्ठ विचारों से, या तो कभी कोई बात को भुलाना है तो फुल स्टॉप लगाना सीखे। तो ये शक्तियां अगर हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारी प्राप्ति होती है समय पर। क्या कहते हैं मेडिटेशन की प्राप्ति क्या है, राइट टाइम, राइट समय पर राइट आइडिया क्लिक होना और उससे हमारे जीवन में सक्सेस मिलना, उससे हमारे जीवन में सक्सेस मिलना। तो ये अष्ट शक्तियों की जीवन के अंदर प्राप्ति होती है और वही हमारी यादगार जगदम्बा के रूप में दिखाते हैं कि वो अष्टभुजाधारी थी। उसको कहा जाता है शिव शक्ति, शिव शक्ति। तो शिव से कनेक्शन करने से, बुद्धि का योग लगाने से वो अष्ट शक्तियां मेरे जीवन के अंदर धारण होती है। तो शक्तियों के को दिखाया है, छोटे बच्चे को कहो शक्तिशाली माना क्या, तो वो ऐसा सा करेगा, हाथों को दिखाएगा। तो वो जगदम्बा कौन है जिन्होंने परमात्मा से योग लगा करके वो अष्ट शक्तियां प्राप्त की है और जीवन के अंदर हर परिस्थिति में विजय प्राप्त की, तो हमें जगदम्बा समान बनाते हैं। राजयोग और क्या करता है, परमात्मा से कनेक्शन कराता है, सर्वशक्तियां हमारे अंदर आती है और हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। ये सातों ही गुण प्रैक्टिकल में आते हैं और शक्ति का काम करते हैं और कहते हैं ये सात वर्चुज, सात रंग पैदा करते हैं और हमारे पूरी बॉडी को क्या करते हैं, हील करते हैं। ये सात रंग जो है, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति, जो ये सात बातें हैं, जैसे कहते हैं नॉलेज जो है हमारी नर्वस सिस्टम को ठीक करता है। क्योंकि देखो कभी भी हम कोई भी बात सुनते हैं ना, तो कई लोग क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम ही बिगड़ती है, बार बार जाना पड़ता है, सीधा असर नर्वस सिस्टम पे आती है। तो सही नॉलेज होने से हम नर्वस सिस्टम को ठीक करते हैं। अगर मेरे जीवन के अंदर आनंद है तो मेरी एंडोक्राइन सिस्टम, मेरे हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो बैलेंस्ड हो जाते हैं। और दूसरा, पीस, शांति मेरे अंदर है तो ENT, ईयर, नोज, थ्रोट, उसके प्रॉब्लम्स ठीक होते हैं। और दूसरा लव, तो लव में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब जो हार्ट से संबंधित रोग है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। प्योरिटी, तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन ठीक होती है तो स्किन के भी प्रॉब्लम्स नहीं होते। और दूसरा है हैप्पीनेस, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। और सातवां है पावर, जो हमारी स्केलेटन सिस्टम, जो हमारी मसल्स है, हमारे बोन्स है, उसको ठीक रखता है। तो ऑन द होल हमारा मन, हमारी बॉडी राजयोग से हेल्दी होती है। सिर्फ बॉडी को ठीक करने से, जो डॉक्टर भी करते हैं, आजकल एक्सरसाइज भी करते हैं, डाइट भी ध्यान देते हैं, लाइफस्टाइल भी चेंज करते हैं, लेकिन मेडिटेशन नहीं करते हैं ना, तो बॉडी ठीक होते हुए भी मन ठीक नहीं है, इसीलिए भी बहुत सारी बीमारियां होती। क्योंकि 80% बीमारियां हमारे मन से होती। तो तन भी दुरुस्त, मन भी दुरुस्त, ये राजयोग से होता है। तो इसीलिए आप घर जाएंगे, यहां तो केवल आपको डेमो दिया गया, लेकिन आप जब घर जाएंगे तो ये राजयोग की प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। कोई भी सेंटर पर जाएंगे और इस प्रैक्टिस को लाइफ के अंदर कंटिन्यू करेंगे तो हम हर तरह से तंदुरुस्त रहेंगे, समय का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। समय का प्रभाव, डिप्रेशन का प्रभाव, आजकल छोटे छोटे भी सुसाइड्स करते हैं, वो सब हमारे जीवन में नहीं होगा। हमारी लाइफ पीसफुल, हैप्पी और ब्लिसफुल बन जाएगी। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। कमेंट्री कराने का तो टाइम नहीं लेते हैं, लेकिन एक गीत बजाएंगे, उसके अंदर ही सब कुछ आ जाएगा और हम मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस की बात है, इनका क्वेश्चन है, बाकी जगह जाते हैं तो आंखें बंद करवाते हैं और यहां आंखें खुली रख करके मेडिटेशन करवाते हैं, उसका रीजन क्या है? वो इजी लगता है क्योंकि वो हमने प्रैक्टिस किया है, जन्म से ही वो देखा है, वो प्रैक्टिस किया है। कोई भी नई चीज जीवन में धारण करने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस तो चाहिए। अभी आंखें खुली क्यों रखनी है? क्योंकि भगवान ने हमें कर्म योग सिखाया है। कर्म करते करते मुझे परमात्मा को याद करना है। कर्म करने के लिए आंखें खुली चाहिए, आंखें खुली चाहिए। तो आंखें खुली रखने से हम मेडिटेशन कर सकते हैं। जैसे मैं आज सेंटर पे बैठी हूं, आश्रम में बैठी हूं, मेरे को और कोई काम नहीं है, कोई जिज्ञासु भी नहीं आया है और मुझे घर को भी संभालना है, ऐसे मैं फ्री हूं। मैं बाहर बैठी हूं, मुझे आंखें खुली करके मेडिटेशन करने की आदत है, मैं मेडिटेशन कर रही हूं। लेकिन कोई आया, एक सेकेंड के लिए मेरी बुद्धि डाइवर्ट हुई, लेकिन मुझे पता है ये व्यक्ति आएगा, जाएगा, परमात्मा के महावाक्यों को पढ़ेगा, लेगा, थोड़ा मेडिटेशन करेगा और वापस चला जाएगा, क्योंकि ये उसका डेली रूटीन है। तो एक सेकेंड के लिए मेरी बुद्धि डाइवर्ट हुई भी, परंतु नेक्स्ट सेकेंड मेरी बुद्धि वापस आ जाएगी। अगर मेरी आंखें बंद होगी, मुझे काम नहीं है, मैं मेडिटेशन कर रही हूं, सामने वाला व्यक्ति आया, उसको पता चला ये बहन मेडिटेशन कर रही है, और मैंने बीच में आवाज, उसके पैर की आवाज सुन करके आंखें खोली देखा, वो कहेगा क्या? क्या कहेगा? मेडिटेशन कर रहे हैं कि इधर आते आते सब जगह बुद्धि को भटका रहे? तो उस वक्त मैं वो टाइम यूटिलाइज नहीं कर सकती हूं। और दूसरा, केवल आंखें खुली नहीं रखनी है, लेकिन जो मेडिटेशन करवा रहा है उससे मुझे दृष्टि लेनी, उसके पास एक्सपीरियंस्ड है। कहते हैं आईज इज अ इंडेक्स, हमारे मन में क्या चल रहा है वो आंखों से पता चलता है। तो वो उस वक्त मेडिटेशन टीचर है, तो चेयर में है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान की है, और वो खुद भी डबल अटेंटिव है कि मैं इस वक्त अपनी बुद्धि को भटकाऊंगी तो सामने वाले की बुद्धि भी भटकेगी। तो केवल आंखें खुली नहीं रखनी है, लेकिन सामने वाले से दृष्टि लेनी है, और दृष्टि लेकर के मुझे समझना है कि मैं एक आत्मा हूं, क्योंकि मेडिटेशन का पहला स्टेप है आत्म भाव में आना। सामने वाली व्यक्ति भी आत्मा है। हम किसी से दृष्टि कब मिला सकते हैं? जब हमारे मन में शुद्धता है संकल्पों की। संकल्पों की शुद्धता नहीं है, बॉडी को देख रहे हैं, कुछ भी विचार आ सकते, तो वो नेगेटिव थॉट्स भी बंद हो जाते हैं, पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं आत्मा समझने से। दूसरा, आंखें खुली इसीलिए भी रखते हैं कि जब हम आंखें बंद करते हैं ना, तो विचारों का फ्लो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। तो मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, विचार शून्य नहीं बनते, लेकिन विचारों को दिशा देते हैं, एक दिशा देते हैं कि अभी मुझे संसारिक विचार नहीं करने हैं, लेकिन मुझे परमात्मा के बारे में सोचना है, मुझे अपने बारे में सोचना है। तो जब विचारों की गति आंखें बंद करने से फास्ट होती है, तो हम उसको दिशा नहीं दे पाते। आप प्रैक्टिस करेंगे आंखें खुली करके, तो आपको अनुभव होगा विचारों की गति स्लो होती है, तो स्लो गति को दिशा देना, दिशा देना आसान हो जाता है। मेडिटेशन और कुछ नहीं है, सकारात्मक विचार है, दुनियावी विचारों से आध्यात्मिक विचार है, परमात्मा के विचार है, वो विचार जो हमें शक्ति प्रदान करते हैं, वो विचार करने हैं। विचार शून्य नहीं होना है, इसीलिए भी आंखें खुली रखनी है। कर्मयोग, आत्मिक भाव और विचारों को दिशा देना, ये आंखें खुली करने से होता है। तो 2 मिनट हम परमात्मा को याद करेंगे।